एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम साहित्य की गलियों में एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां मंजिल खुद एक सवाल है, एक ऐसी कहानी जहां जासूस अपने ही अतीत का पीछा कर रहा है और सुराग वो इतिहास की धुंध में जैसे खोए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी लेखक पैट्रिक मोदियानो के कालजयी उपन्यास रू दे बुटीक्स ऑब्सक्योर की। इसे अंग्रेजी दुनिया मिसिंग पर्सन के नाम से जानती है। ये महज एक किताब नहीं बल्कि स्मृति, पहचान और खोए हुए समय की भूल भुलैया में एक गहरा गोता है। पैट्रिक मोदियानो समकालीन फ्रांसीसी साहित्य का एक बेहद अहम नाम है। उन्हें 2014 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 1945 में हुआ था, ठीक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के फौरन बाद, और ये दौर खासकर जर्मनी के कब्जे वाला फ्रांस जिसे ऑक्यूपेशन कहते हैं,
हाँ, ऑक्यूपेशन,
वो उनके लेखन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है।
बिल्कुल।
और ये समझना जरूरी है कि ये कब्जे का दौर सिर्फ मतलब एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी,
सही।
ये फ्रांसीसी समाज के लिए एक गहरा सदमा था जहां पहचान, वफादारी, सच, ये सब चीजें सवालों के घेरे में थीं।
और यही माहौल मोदियानो के लेखन की बुनियाद बनता है ना।
हाँ,
के पिता की वो रहस्यमयी पृष्ठभूमि, माँ की अनुपस्थिति,
हाँ, वो सब उनके किरदारों की अनिश्चितता में, उनकी खोज में झलकता है।
और इसीलिए शायद उन्हें अक्सर स्मृति का पुरातत्वविद कहते हैं।
हाँ, सुना है मैंने भी।
जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी जगहों को खोदकर वो दबी हुई सच्चाइयों को बाहर निकाल रहा हो।
उनकी भाषा बहुत सदीवी लगती है, कम शब्दों वाली।
बिल्कुल,
कम शब्दों वाली, पर उसमें एक अजीब सी उदासी, एक धुंधलका सा तैरता रहता है।
हाँ,
पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम भी नायक के साथ पेरिस की किसी धुंध भरी गली में टटोलते हुए चल रहे हों, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। बिल्कुल। और यही अनिश्चितता, यही टटोलना रू द बुटीक ऑब्सक्योर के दिल में है। 1978 में छपा ये उपन्यास, जिसे फ्रांस का वो प्रतिष्ठित प्रिक्स गोंकोर सम्मान मिला।
हाँ, प्रिक्स गोंकोर।
वो ऊपरी तौर पर एक जासूसी नॉवल जैसा लग सकता है, एक तरह का, वो क्या कहते हैं,
रोमान नोआर।
हाँ, रोमान नोआर, मतलब
वो जासूसी उपन्यास जो अक्सर निराशा और नैतिक धुंधलके में डूबे होते हैं।
हाँ, एक जासूस है, सुराग है, गवाह है,
सब कुछ है,
पर मुदियानो इस ढांचे का इस्तेमाल कुछ बहुत अलग करने के लिए करते हैं।
यहाँ रहस्य किसी कत्ल या चोरी का नहीं,
नहीं,
बल्कि खुद के खो जाने का है। जासूस यहाँ किसी और को नहीं, खुद को ढूंढ रहा है।
सही कहा, ये पहचान की तलाश, अपने होने के असल मतलब को समझने की एक गहरी, एक अस्तित्ववादी कोशिश बन जाती है।
उपन्यास खुलता ही एक ऐसे वाक्य से जो पाठक को जैसे हिला देता है, मैं कुछ भी नहीं हूं।
आई एम नथिंग।
हाँ, ये आवाज है कहानी के नायक की, हमारे कथावाचक की, जो पिछले 10 साल से गाय रोलैंड नाम के साथ जी रहा है।
10 साल से, पर उसे पहले का कुछ याद नहीं।
कुछ भी नहीं, 10 साल पहले क्या हुआ उसे याद नहीं। वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका था, जिसे अंग्रेजी में टोटल एमनेसिया कहते हैं।
टोटल एमनीजिया मतलब अपना नाम, चेहरा, अतीत, सब गायब,
सब कुछ एक कोरे कागज जैसा। पिछले 8 सालों से उसने एक बुजुर्ग भले दिल के प्राइवेट डिटेक्टिव कॉन्स्टेंटन वॉन हुट्टे,
हाँ, हुट्टे,
उनके साथ काम करते हुए थोड़ी स्थिरता पाई थी। दूसरों की जिंदगियों के बिखरे टुकड़ों को जोड़ना वो उसका पेशा बन गया था।
लेकिन अब हुट्टे रिटायर हो रहे हैं, एजेंसी बंद हो रही है।
हाँ, और गाय रोलैंड के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक जाती है, वो फिर अकेला, फिर दिशाहीन।
और यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है ना, ये एक तरह का उत्प्रेरक बन जाता है।
बिल्कुल, अपने पेशेवर जीवन के अंत के साथ वो अपने जासूसी की सारी महारत, अपनी पूरी स्किल, अपने जीवन के सबसे बड़े केस पर लगाने का फैसला करता है।
और वो केस है खुद को खोजना।
हाँ, उसकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ही स्मृति के खालीपन से है।
सवाल सिर्फ ये नहीं कि मैं कौन था,
नहीं, बल्कि ये भी कि पहचान आखिर होती क्या है। क्या ये सिर्फ नाम और पते हैं या कुछ और गहरा।
तो ये गाय रोलिन का किरदार, ये कैसा है? क्या वो एक पारंपरिक हीरो टाइप है?
पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं कह सकते, वो एक पूरी तरह से गढ़ा हुआ चरित्र कम और एक सचेत अनुपस्थिति ज्यादा लगता है।
सचेत अनुपस्थिति
मतलब मतलब जैसे एक खाली जगह जो खुद अपनी खालीपन को महसूस कर रही हो। स्मृति लोप ने उसे थोड़ा अलग थलग एक बाहरी पर्यवेक्षक जैसा बना दिया है।
हाँ, ऑब्जर्वर।
लेकिन जासूसी के काम ने उसे बारीकी से देखने वाला, धैर्यवान और वो बिखरी कड़ियों को जोड़ने में माहिर बना दिया है।
उसकी प्रेरणा क्या है, मतलब क्यों ढूंढ रहा है वो खुद को?
कोई बड़ा इनाम या शोहरत नहीं, बस अपनेपन की जड़ों की एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। वो बस अपने आप को इतिहास के किसी पन्ने पर दर्ज करना चाहता है।
जैसे जैसे वो सुराग ढूंढता है, वो धीरे धीरे एक संभावित अतीत की परतों को खोलता है।
अच्छा,
उसे लगने लगता है कि शायद वो जिमी पेड्रो स्टर्न नाम का कोई आदमी था, डोमिनिकन पासपोर्ट वाला ग्रीक राजनयिक जो युद्ध के दौरान पेरिस में रहता था।
जिमी पेड्रो स्टर्न।
हाँ,
हाँ, या फिर कुछ सुराग उसे पेड्रो मैकेवॉय की तरफ भी इशारा करते हैं।
मैकेवॉय।
हाँ, और ये नाम की अनिश्चितता भी जैसे पहचान के उस फिसलन भरे स्वभाव को ही दिखाती है।
और उसके वो पुराने बॉस वॉन हुट्टे, उनका क्या रोल रहता है इस खोज में?
हुट्टे, वो एक तरह से स्थिरता और दया का प्रतीक हैं। उनका रिटायर होना ही गाय को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अतीत की उन अनजानी गलियों में धकेलता है।
अच्छा।
वो जाते जाते गाय को कुछ संपर्क देते हैं, अपनी पुरानी फाइलों तक पहुंच देते हैं, जैसे कोई पिता अपने बेटे को सफर पर निकलने से पहले आखिरी मदद दे रहा हो।
और फिर अतीत की वो धुंधली शक्लें हैं जिनके इर्द गिर्द गाय की जांच घूमती है। डेनिस, फ्रेडी, गे अर्लो, ये कौन लोग थे?
ये वो लोग हैं जिनके खोए हुए जीवन की कहानी गाय की जांच परत दर परत खोलती है। डेनिस क्वाड्रियूज, फ्रेडी हॉवर्ड डीलूज, गे अर्लो आंद्रे वाइल्डमर।
काफी नाम है।
हाँ, ये कब्जे वाले पेरिस में एक रंगीन पर खतरों से भरी जिंदगी जीने वाले दोस्तों का एक गुट था।
कब्जे वाले पेरिस में रंगीन जिंदगी, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता?
लगता है, पर शायद यही हकीकत थी उस दौर की। चमक के नीचे खतरा छिपा था। इनमें जिमी पेड्रो स्टर्न या मैकेवॉय है जिसके गाय होने की संभावना है, फिर डेनिस क्वाड्रियूज,
डेनिस जिसका जिक्र पहले भी आया था।
हाँ, तस्वीरों में दिखने वाली एक खूबसूरत रहस्यमयी लड़की, अक्सर पेड्रो के साथ। ऐसा लगता है कि वो पेड्रो के अतीत का एक गहरा प्यार थी, और उसे ढूंढना गाय के लिए खुद को ढूंढने जितना ही जरूरी हो जाता है।
और बाकी दोस्त, फ्रेडी, गे, आंद्रे,
सबकी अपनी बचने, भागने या गायब हो जाने की दुखद कहानियां हैं। वे मिलकर उस दौर की चमक और खतरे की एक एक भूली हुई दुना की तस्वीर बनाते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ये किरदार हमें कभी पूरे नजर नहीं आते हैं, है ना?
बिल्कुल नहीं, वे सिर्फ टुकड़ों में सामने आते हैं। किसी पुरानी तस्वीर में उनका अंदाज, किसी खत में उनका जिक्र, किसी बूढ़े गवाह की धुंधली सी याद।
गाय की खुद को खोजने की यात्रा, अनजाने में ही उनके खोए हुए जीवन को याद करने की, उन्हें एक तरह से श्रद्धांजलि देने की यात्रा भी बन जाती है।
सही कहा।
तो ये खोज शुरू कैसे होती है? पहला कदम क्या होता है उसका?
पुट्टे के रिटायर होने के बाद गाय के हाथ में एक पुरानी ग्रुप फोटो आती है, उसकी फाइल में थी। वो उसे घूरता रहता है इस उम्मीद में कि कोई चेहरा, कोई भाव, कुछ याद आ जाए।
पर कुछ नहीं होता।
कुछ नहीं तो उसकी खोज बहुत मेथोडिकल, मतलब व्यवस्थित ढंग से शुरू होती है। पुरानी फोन डायरेक्टरी खंगालना, एजेंसी के पुराने संपर्कों से पूछना,
जैसे वो कोई और केस सुलझा रहा।
बिल्कुल, पर हर सुराग उसे अनजाने में अपने ही अतीत के और करीब खींचता जाता है। उसे एक रूसी प्रवासी मिलता है जो उसके जैसे दिखने वाले एक शख्स को याद करता है। वो बताता है कि वो युद्ध से पहले पेरिस के एक रूसी रेस्टोरेंट में काम करता था।
अच्छा, और
वो डेनिस और फ्रेडी का भी जिक्र करता है।
ये मुलाकातें, ये कैसी होती होंगी? उन लोगों से मिलना जो शायद उस अतीत को उसे भूल जाना चाहते हो।
हर मुलाकात एक सियोंस जैसी लगती है।
सियोंस?
आत्मा आवाहन सत्र। हाँ, कुछ वैसा ही। गाय बहुत नरमी से, धीरज से उन बूढ़े हो चुके लोगों से यादों के धागे पकड़वाने की कोशिश करता है। ये लोग उन चेहरों को, उन नामों को कब का भुला चुके हैं। ये बहुत बहुत नाजुक काम है, जैसे पुरानी बेहद नाजुक तस्वीरों को संभालना।
धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगती है फिर।
हाँ, धीरे धीरे। और नाम सामने आते हैं, फ्रेडी हॉवर्ड डीलूज, मॉरिशस का एक ब्रिटिश नागरिक, गे ऑर्लो, एक रूसी अमेरिकन डांसर।
एक डांसर भी।
हाँ, पता चलता है कि ये सब कब्जे वाले पेरिस की उस खौफनाक पृष्ठभूमि में भी एक बोहेमियन, ऊंचे तबके की जिंदगी जी रहे थे, फ्रांस से भागने की योजनाएं बना रहे थे।
और फिर उससे वो तस्वीर मिलती है।
हाँ, वो तस्वीर जिसमें वो खुद, या वो शख्स जो वो हो सकता है, डेनिस क्वाड्रियूज के साथ खड़ा है। डेनिस के लिए उसके मन में एक अजीब सा गहरा खिंचाव पैदा होता है, उसे ढूंढना एक जुनून सा बन जाता है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, क्या अतीत साफ होता जाता है या और उलझता है?
नहीं, साफ नहीं होता। यही तो मोदियानों की खासियत है, रहस्य और गहराता जाता है। सुराग उसे एक रिटायर्ड जॉकी तक ले जाते हैं जो फ्रेडी को जानता था, एक ड्रेसमेकर जिसे डेनिस याद है, एक दरबान जिसे उस गुट का अपार्टमेंट याद है।
पर यादें बिखरी हुई हैं।
हाँ, बिखरी हुई और अक्सर एक दूसरे से अलग। कोई उसे पेड्रो स्टर्न कहता है, कोई सिर्फ उपनाम से याद करता है।
हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जब गवाह उसे अलग अलग नामों से याद करते हैं या अधूरी बातें बताते हैं। ये सिर्फ कहानी का एक पेच नहीं लगता,
नहीं,
ये मोदियानों का तरीका है ये दिखाने का कि पहचान कितनी कितनी फिसलन भरी चीज है, कितनी आसानी से हाथ से निकल जाती है।
बिल्कुल। और उपन्यास में एक दोहराव वाली लय सी है।
लय? कैसी लय?
एक नया सुराग, फिर किसी बूढ़े गवाह से मुलाकात, एक नई तस्वीर या पता, और फिर गाय का अकेले बैठकर उन टुकड़ों पर सोचना। ये चक्र, ये उसकी खोज की अनिश्चितता को और गहरा करता है।
उसकी जांच में सबसे बड़ा मोड़ कब आता है?
वो तब आता है जब एक सुराग उसे मेजेव ले जाता है।
मेजेव, आल्प्स पहाड़ों में स्की रिसोर्ट।
हाँ, जो युद्ध के दौरान अमीरों के लिए भागकर छिपने की जगह थी।
यहीं से उसके दोस्तों के गुट ने सरहद पार कर स्विट्जरलैंड भागने की योजना बनाई थी।
अच्छा, तो भागने की कोशिश वहीं से हुई थी।
हाँ, मेजेव में वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जिसे 1943 की सर्दियों की एक दर्दनाक कहानी याद है।
दर्दनाक कहानी?
हाँ, पेड्रो और डेनिस के हुलिये से मिलता जुलता एक नौजवान जोड़ा बर्फीले तूफान में पहाड़ पार करने की कोशिश कर रहा था। वे बिछड़ गए। आदमी को गोली लगी, सिर में चोट आई और उसे मरा समझकर छोड़ दिया गया। औरत का क्या हुआ पता नहीं, शायद पकड़ी गई या बर्फ में कहीं खो गई।
तो ये घटना ये गाय के स्मृतिलोप की एक एक संभावित वजह हो सकती है।
सिर की वो चोट?
हाँ, हो सकती है। एक तरह से ये एक चाबी है, लेकिन ताला अब भी पूरी तरह नहीं खुलता।
क्या सिर्फ एक शारीरिक चोट ही किसी की पूरी पहचान मिटा सकती है, या मामला शायद और गहरा है?
शायद मामला गहरा ही है, क्योंकि इस जानकारी के बाद गाय की खोज और तेज हो जाती है, शायद और बेचैन भी।
डेनिस का क्या होता है? उसका कोई सुराग मिलता है?
उसका आखिरी सुराग उसे एक पुरानी एड्रेस बुक तक ले जाता है। अंदर रोम का एक नाम और पता मिलता है, जिमी पेड्रो स्टर्न, बोर्गो पॉपियो।
रोम?
हाँ, वो उम्मीद लेकर रोम जाता है, पर वो पता कहीं नहीं ले जाता। एक और बंद गली,
फिर
एक आखिरी नाउम्मीदी भरे पल में उससे उसी एड्रेस बुक में एक और पता मिलता है, बोरा बोरा, फ्रेंच पॉलिनेशिया का।
बोरा बोरा, वो तो बहुत दूर है।
हाँ, उपन्यास खत्म होता है गाय के इस दूर दराज पते पर एक टेलीग्राम भेजने के साथ। तार में जानकारी के लिए एक सीधी, सरल लेकिन गहरी पुकार है, कुछ ऐसा जैसे कुछ भी मत भूलो, फॉरगेट नथिंग।
और वहीं किताब खत्म हो जाती है।
हाँ, एक अनुत्तरित सवाल पर अटकी हुई।
हमें कभी पता नहीं चलता कि गाय रोलैंड असल में कौन था।
कभी नहीं। अंत में ऐसा लगता है जैसे खोज ही उसकी पहचान बन गई है, एक गुमशुदा व्यक्ति बने रहने की स्थिति। मोदियानो हमें कोई आसान जवाब देकर संतुष्ट नहीं करते हैं।
चलिए अब इस कहानी के गहरे अर्थों पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विषय है स्मृति, इतिहास और भूलना।
हाँ, बिल्कुल।
मोदियानो जिसे स्मृति की कला कहते हैं, ये उपन्यास उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। गाय रोलैंड का स्मृति लोप महज एक निजी त्रासदी नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये उस सामूहिक विस्मृति, उस हिस्टोरिकल एमनीजिया का आईना है जिससे कब्जे के बाद का फ्रांस गुजरा। जैसे गाय को उसका अतीत पुकारता है, वैसे ही इतिहास की दबी आवाजें पेरिस की सड़कों पर गूंजती हैं।
और भूलना, भूलना शायद जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, पर ये अपने पीछे एक खालीपन छोड़ जाता है, एक भूतिया शून्य।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है पहचान की मायावी प्रकृति का सवाल। पहचान आखिर है क्या?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये हमारा नाम, पासपोर्ट, तस्वीरें हैं, या दूसरों की यादों में हमारा अक्स?
गाय का स्मृतिलोप इसी पहेली को जागर करता है। उपन्यास जैसे कहता है कि पहचान कोई ठोस चीज
नहीं,
बल्कि एक बहती हुई टुकड़ों में बंटी कहानी है जिसे हम लगातार लिखते और दोबारा लिखते रहते हैं।
यहाँ तक कि वो पेड्रो स्टर्न या मैकेवॉय,
जिसकी पहचान गाय अपनाने की कोशिश करता है,
वो खुद भी शायद कई नकाबों के पीछे छिपा एक रहस्य था।
और फिर है अतीत की पकड़ वर्तमान पर। मोदियानो जैसे कहते हैं कि हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते,
चाहे हम उसे याद रखें या भूल जाएं।
हाँ, गाय रोलैंड अपनी याददाश्त खो चुका है, फिर भी उसका अतीत उसे खींचता है, उसे आवाज देता है।
पेरिस शहर खुद इसका गवाह है। हर गली हर इमारत में इतिहास की परतें हैं, जैसा उपन्यास में महसूस होता है, उन किरदारों के लिए जैसे वक्त रुका हुआ था।
हाँ, वो जैसे अब भी 1943 या 1944 में जी रहे थे।
बिल्कुल, वर्तमान बस एक पतली सी सतह है जिसके नीचे अतीत हमेशा हमेशा उबलता रहता है।
एक और दिलचस्प बात यह है कि खोज ही मंजिल बन जाती है ना?
हाँ, ये बहुत अहम है। आम जासूसी कहानियों में अंत में पर्दा उठता है, रहस्य सुलझता है, पर यहाँ अंत जानबूझकर खुला छोड़ा गया है।
अंत में कोई जवाब न मिलना ही शायद सबसे बड़ा जवाब है।
हाँ, मोदियानो हमें बताते हैं कि पहचान कोई खोई हुई चीज नहीं जिसे ढूंढ लिया जाए, बल्कि ये एक सतत यात्रा है, अपने अतीत के टुकड़ों को समेटने और समझने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश।
अपने खोज में ही गाय रोलैंड अपने लिए एक नया अर्थ, एक नई कहानी गढ़ लेता है।
बिल्कुल,
और आखिर में नैतिक अस्पष्टता और जिंदा रहने की जद्दोजहद का पहलू भी बहुत अहम है।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था। ये उपन्यास नायक या खलनायक की सीधी साधी श्रेणियों को तोड़ता है। ये एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां जिंदा रहने के लिए समझौते करने पड़ते थे।
पेड्रो की वो जाली दस्तावेज बनाने जैसी गतिविधियां,
हाँ, वो इसी उलझन को दिखाती हैं। युद्ध के उस माहौल में नैतिक रूप से पाक साफ बने रहना शायद एक ऐसी विलासिता थी जो हर किसी के नसीब में नहीं थी।
मैं कहानी कहते हैं,
हाँ, इससे हम सीधे गाय रोलैंड के दिमाग में उसकी उलझन और तलाश में शामिल हो जाते हैं।
भाषा बहुत माहौल बनाने वाली है, वो उदासी, धुंध, शाम का धुंधल का।
बिल्कुल, और पेरिस के असली पतों, सड़कों, कैफे का इस्तेमाल कहानी को जमीन से जोड़े रखता है।
हाँ, और कहानी का टुकड़ों टुकड़ों में सामने आना, वो फ्रैगमेंटेशन,
वो खुद स्मृति के स्वभाव जैसा है। यादें भी तो ऐसे ही बिखरी हुई आती हैं, पूरी तस्वीर एक बार में नहीं बनती।
प्रतीक भी बहुत गहरे हैं, वो पुरानी धुंधली तस्वीरें जो सबूत तो है पर सच छुपा भी सकती हैं।
हाँ, या मेजीव की वो बर्फ जो सब कुछ ढक लेती है, मिटा देती है। और उपन्यास का शीर्षक अंधेरी दुकानें जो मुड़ी
दुकानें,
हाँ,
वो शायद स्मृति और इतिहास के बंद अंधेरे कोनों का इशारा है। इन सब के साथ भाषा का वो संयम वो उदासी को और गहरा कर देता है। पढ़ने वाले पर इसका असर कैसा होता है? मेरे ख्याल से एक उदासी तो रहती है पर साथ ही एक गहरी हमदर्दी।
हाँ, हमदर्दी और एक अनसुलझी सी कसक भी। गाय रोलैंड की वो बेचारगी और उसकी खामोश तलाश हमें अपनी पहचान, अपनी यादों और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
ये कोई नाउमीद करने वाली किताब नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गहरी मानवीय संवेदना जगाने वाली है।
बिल्कुल, और ये शहरों को देखने का नजरिया भी बदल सकती है। ऐसा लगने लगता है कि हर पुरानी गली, हर इमारत न जाने कितनी अनकही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है।
हाँ, ये हमें खोज के महत्व के बारे में एक शांत सबक सिखाती है। उस खालीपन में भी इंसान का मन जुड़ाव और अर्थ ढूंढता रहता है।
गाय रोलैंड की वो लगातार उम्मीद भरी खोज अपने आप में गरिमा भरा काम बन जाती है।
बिल्कुल,
तो शायद अंत में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खुद की तलाश एक सफर है जो हम सब तय करते हैं, चाहे हमारी याददाश्त पूरी हो या टुकड़ों में।
और कैसे अतीत, चाहे याद रखा गया हो या भुला दिया गया हो, हमेशा मौजूद रहता है, हमें बनाता और बिगाड़ता रहता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।